on Labor Day. पाप कर्मों के लिए उन्हें प्रायश्चित करना पड़ा। इस भौतिक जगत में कोई कितना ही जागरूक क्यों न रहे, कुछ न कुछ पाप कर्म करता ही है, भले ही वह पाप न करना चाहता हो। उदाहरणार्थ सड़क पर चलते हुए उसके पांव के नीचे अनेक चींटियां तथा कीड़े कुचले जा सकते हैं और अनजाने ही अनेक जीवों की हत्या हो सकती है। इसीलिए पंच यज्ञ का वैदिक सिद्धांत अनिवार्य है, किंतु इस कलयुग में लोगों को बहुत बड़ी छूट मिली हुई है। यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसा, हम कृष्ण के प्रछन्न अवतार भगवान चैतन्य की पूजा कर सकते हैं। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, यद्यपि वे साक्षात कृष्ण हैं किंतु वे सदैव हरे कृष्ण कीर्तन करते रहते हैं और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं। मनुष्य को सलाह दी जाती है कि वह संकीर्तन यज्ञ द्वारा इस अवतार की पूजा करे। संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना मानव समाज के लिए विशेष छूट है, जिससे लोगों को ज्ञात या अज्ञात पाप कर्मों से प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। हम अनंत पापों से घिरे हैं, अतएव हमारे लिए अनिवार्य है कि हम कृष्ण भावना अमृत स्वीकार करके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्न मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्तरु भयश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिने हरे कृष्णा। तो किसी को याद है क्या अभी चर्चा हुई, क्या पढ़ा अभी? अनुवाद और तात्पर्य पढ़ा, उसमें से किसी को कुछ याद है? हैं? नहीं, अनुवाद क्या है इसका? ये तो यहां जो लिखा हुआ है उसको बिना देखे पढ़ो, बिना देखे बोलो, या तात्पर्य में से बताओ। तात्पर्य में प्रभा जी क्या बता रहे हैं वो तो आपके सामने नहीं है, हैं? कौन बता सकता है ऐसा? चलो आप बताओ। शाबाश, वेरी गुड। शाबाश, वेरी गुड। सारे पॉइंट बता दिए, सारे पॉइंट बता दिए इन्होंने, है कि नहीं? सब पॉइंट बता दिए, यही पॉइंट बताए हैं प्रभुपाद जी ने, है ना? तो आप ये तो जानते ही हैं जो स्टोरी चल रही है ना, भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश। तो इसकी जो इस जो सारा जो विश्व का विनाश किया, तो इसके पीछे अगर कथा के हिसाब से देखा जाए तो कौन है इसके पीछे, इसका कारण कौन है? कामधेनु काओ, है ना? कामधेनु गाय, उसी से चक्कर बढ़ाना था ना, इधर सब ठीक चल रहा था। तो कई बार ऐसे होता है कि आप के पास अगर कोई प्रभावशाली चीज है या आप प्रभावशाली हो तो वो मुसीबत का कारण बन जाता है, दूसरों की ईर्ष्या के कारण ना। जैसे द्वारका में भी वो उसके पास सामंतक बनी थी, सत्राजीत के पास, वो मुसीबत बन गई। नहीं, वो सामंतक बनी के कारण सारा भगवान के ऊपर भी कलंक लग गया, कितना बड़ा सीन हो गया, कांड हो गया। क्या सामंतक यहां पर काम देनु गाय के कारण, है ना? क्योंकि जब आए राजा जो हैं सहस्र बाहु, हैं, जब राजा आए तो उन्होंने देखा ये जंगल में इतना बड़ा सत्कार कर दिया उसने, जन्मादग्नि ने, परशुराम जी के पिताजी ने। तो उसको पता लगा ये सारा कारण क्या है, कामधेनु है। कामधेनु इसके पास है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी बना लो, कुछ भी इनसे ले लो। तो कामधेनु को जबरदस्ती लेके चला गया। तो परशुराम जी को पता लगा, तो परशुराम जी जब आए तो उन्होंने मार दिया उसको, मार दिया और फिर वापस लेके आ गए गाय। अब जो उनके पुत्र थे तो उनको बहुत गुस्सा था, उनको ने भी वो मौका ढूंढ रहे थे। उन्होंने जब देखा ये सारे परशुराम उनके भाई गए हैं जंगल में, तो पीछे से आए और जन्मदाग्नि जो है समाधि में है, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भगवान की ध्यान कर रहे हैं, और गला काट दिया उनका, वो गला काट दिया और सर ले गए, साथ ही ले गए सर भी, सर भी नहीं छोड़ के गए। और पत्नी के सामने, उनकी पत्नी रेणुका सामने चिल्ला रही है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कितने क्रूर थे देखो, हैं कितने क्रूर थे, कितने पापी थे। और जब परशुराम जी वापस आया तो बहुत गुस्सा आ गया उनको, तो बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने अपना वो उठाया फरसा, एक्स कुल्हाड़ी उठाई, उन्होंने कुल्हाड़ा उठाया और छोड़ूंगा नहीं, और सारे इसी चक्कर में सबका सब क्षत्रिय विहीन हो गई पृथ्वी। नहीं क्या प्रभु जी, नहीं समझ आ रही आपको? समझ नहीं आ रही क्या? हाँ, क्षत्रिय ही नहीं रहे कोई, राजा रहा ही नहीं, राजा ही नहीं कोई रहा। सारी पृथ्वी जो है वो किनके कब्जे में आ गई? परशुराम जी के कब्जे में, सारी पृथ्वी इनके कब्जे में थी। तो इसीलिए बताया कि उन्होंने फिर बांट दी, सबको दे दी, अपने पास कुछ नहीं रखा, अपने पास रहने की जगह भी नहीं थी इनकी, सबको दे दी। ये वाला भाग इसको, ये इसको बताया ना पिछले श्लोक में। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं कि कर्म बंधन एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करने का घोतक है ना। यद्यपि परशुराम भगवान के अवतार थे, किंतु अपने पाप कर्मों के लिए उन्हें प्रायश्चित करना पड़ा। अब जन्मादग्नि ने भी कहा परशुराम को कि अपनी मां का सर काटो, एक कलंक नहीं है, है ना, तो अपना सर कटा उनका, है कि नहीं? कर्म देखो कैसे कर्म आते हैं वापस। उन्होंने कहा इसका गला काट दो, वो भी कोई, उसने इतना बड़ा पाप थोड़ा कर दिया था कोई, गला ही काट दो उसका। वो कहा गला काट दो इसका, है? और अब खुद का भी गला कटा फिर उनका। तो ये जो है कर्मों का बंधन जो है बहुत ही सूक्ष्म है, और इस संसार में हमें इससे बचना चाहिए, यही कर्म कौशल है। राजा हो, महाराजा हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, यहां पे देखो बताया परशुराम तो भगवान के अवतार हैं, है ना, तो इसीलिए भी उनको कहा है कि यद्यपि परशुराम भगवान के अवतार थे, किंतु अपने पाप कर्मों के लिए उन्हें प्रायश्चित करना पड़ा। इस भौतिक जगत में कोई कितना ही जागरूक क्यों न रहे, कुछ ना कुछ पाप कर्म करता है, भले ही वह पाप न करना चाहता हो। भौतिक जगत का ये संरचना ही इस तरह से हुई है कि पाप करे बिना हम जी नहीं पाएंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा अगर हम सोचेंगे, है ना। जैसे एक व्यक्ति हैं हमारे, वो उनका काम था चक्की में वो गेहूं पीसते थे, आटा मतलब आटे की चक्की होती है ना। तो भक्त बने तो इतना वो इसके बारे में सोचने लगे कि कहते हैं मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि जब गेहूं लेके आते हैं लोग तो उसमें कई जो है कीटाणु होते हैं, कीड़े होते हैं, और वो भी पीस जाते हैं, वो मैं भागी हूं, मैं पीसता हूं, समझ रहे हैं। तो उन्होंने वो काम छोड़ दिया। तो मैंने उनको समझाया, लेकिन उनको नहीं ये बात समझ आई कि इस भौतिक जगत में हम पाप कर्मों से ऐसे विमुख नहीं हो सकते कि हम छोड़ दें, काम करना छोड़ दें। उसका तरीका प्रभुपाद जी ही बता रहे हैं कि पहले तो कह रहे हैं कि इसीलिए पंच यज्ञ का वैदिक सिद्धांत अनिवार्य है। वेदों में पांच यज्ञ बताए हैं, पांच यज्ञ करने चाहिए हमें। प्रभुपाद जी उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु इस कलयुग में लोगों को बहुत बड़ी छूट मिली है, यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती ही सुमेधसा, है ना, कि इस कलयुग में सबसे बड़ा जो यज्ञ है वो है ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, मिलके और अलग से जप करना, है ना। बारहवें स्कंद में परीक्षित महाराज को सुखदेव को स्वामी यही कह रहे हैं, है? कलेर दोष निदे राजन, ये राजा ये दोष, ये जो कली है ये तो दोषों का युग है, मतलब हर चीज में दोष है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें दोष ना हो, समझ रहे हैं आप, दोषों से युक्त है। कले दोष निदे राजन मतलब दोष ही दोष है, चारों तरफ समुद्र है दोषों के। अस्ति एको, इसमें एक ही महान गुण है, लेकिन अस्ति एको महान गुना, एक महान गुण है, क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, कि जो भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहां पे इसीलिए इस चीज पे जोर दे रहे हैं कि हमें ये वाला यज्ञ करना है, नहीं तो हम पाप कर्मों से हम बच नहीं पाएंगे। पाप कर्म तो हमारे जिएंगे तो हमें होएंगे ही होएंगे, तो उनसे हम अलग से बचना चाहें तो संभव नहीं है। वो इसीलिए हमें जो यज्ञ है, ये वाला यज्ञ जो है बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ये भी एक यज्ञ है। जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए हमें, ये सोच के कि ये पूजा कर रहे हैं हम, है ना। जैसे पुजारी जी अभी पूजा कर रहे हैं, राधा राधिका रमन और कृष्ण बलराम सबकी पूजा कर रहे हैं, ये भी पूजा है, ये भी एक हिस्से हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। इतना ही महत्व देना चाहिए हमें। जैसे पुजारी जी किसी से बात थोड़ा कर रहे हैं, कितने लोग खड़े हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हो, भगवान की तरफ ध्यान है उनका। ऐसे हम भी जब जप करें तो बात नहीं करें हम, है ना, बिल्कुल उतना ही महत्व देना चाहिए। और ऐसा सोचना चाहिए कि जब हम जप कर रहे हैं, जैसे इनको देखो जप कर रहे हैं कुर्सी पे बैठ के, छोड़ो कुर्सी इधर आ जाओ, कुर्सी पे बैठना है तो कुर्सी ले आओ, कुर्सी की मनाही नहीं है, लेकिन इधर उधर देख रहे हो, जप कर रहे हो, क्या कुछ नहीं कर रहे। पास आओ, इधर आओ, सामने आओ, मेरे पास आके बैठो, इधर आओ मेरे पास आके बैठो, आओ इधर आओ, इतना सुंदर तिलक लगा के आए हो, फायदा क्या, इधर आओ, माला को छोड़ दो। मेरी भी माला पूरी नहीं हुई आज, क्योंकि क्लास की तैयारी करनी थी, टाइम ही नहीं मिला, है कि नहीं। मैं भी माला करूं और लेक्चर दूं, अच्छा लगेगा, मेरी माला पूरी हो जाएगी, लेक्चर भी दे दूंगा, नहीं होगा ना, आपको अच्छा लगेगा, शाबाश शाबाश, थैंक यू। तो यही मैं बात बताना चाह रहा था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये, सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से नहीं करेंगे तो इसका पूरा लाभ होगा ही नहीं, हमें पूरा लाभ नहीं होगा इसका। लाभ तो होगा क्योंकि इतनी पावरफुल चीज है ये, है ना। जैसे सूर्य है, सूर्य, अब आप सूर्य की चाहते हो रोशनी, सूर्य की चाहते हो आप शक्ति चाहते हो, और दरवाजे सारे बंद कर लिए हैं, और दरवाजे बंद करके पर्दे भी काले लगा दिए हैं, तो कहां से आपको मिलेगी उसकी शक्ति। ठीक है वो बहुत शक्तिशाली है, फिर भी कुछ ना कुछ आपको रोशनी मिल जाएगी, लेकिन आपने तो कोई कसर छोड़ी नहीं ना कि कुछ हमें नहीं चाहिए जी। नहीं समझ में आया उदाहरण, समझ नहीं आया आपको, आया ना समझ, दोबारा समझाऊं। मैं ये कह रहा हूं, जैसे अब सूर्य की रोशनी इस हॉल में आ रही है ना, इसकी भी जरूरत नहीं, इसको बंद कर दो, ये क्यों चल रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं है, खाम का मंदिर का खर्चा हो रहा है, ये बंद नहीं होता। ये कई बार होता ना, वो कुछ इंडिकेशन होता है कि लाइट आ रही है, उसके लिए तो नहीं चल रहा ना ये। हाँ थैंक यू थैंक यू। तो अब बताओ कितनी अच्छी रोशनी आ रही है, किस लिए, कि हमने दरवाजे भी खोल दिए कि शीशे से भी छन के ना आए, कितनी सुंदर है, वहां तक पहुंच रही है देखो, एक एक कोने तक, हालांकि सूर्य सामने नजर भी नहीं आ रहा, पेड़ों ने उसको ढका हुआ है, कि फिर भी इतना पावरफुल है ये सूर्य, है कि नहीं। लेकिन अब आप कोई करे कि नहीं जी मैं तो सारे दरवाजे बंद करूंगा और ये जो शीशे हैं इन पे काला कागज लगाऊंगा अच्छी तरह से, और फिर काले पर्दे भी लगा दूंगा, तो सूर्य क्या करेगा, सूर्य का कसूर है आपका है, सूर्य का, वेरी गुड, समझ में आ गया, थैंक यू। तो इसी तरह से ये जो जप है, भगवान के नाम है, बहुत पावरफुल है, है ना। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सारी शक्ति डाल दिया इन नामों में है, लेकिन अगर हमारा उसमें अनुराग ही नहीं है उसके प्रति, अनुराग तो चलो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं नहीं है, हमारे में भी महाप्रभु कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं नहीं है, लेकिन प्रयास तो करें, है ना। अगर नहीं है तो और ध्यान करें ना, जिस चीज में हमारा अनुराग नहीं है तो और ध्यान से करें हम। जब हम जप कर रहे हैं तो सारे संसार के कार्य, सारे संसार के लोग वेट कर सकते हैं, लेट देम वेट, वेट करो, है कि नहीं। जैसे वो भक्त थे ना, वो जिनके कारण उनका नाम विट्ठल पड़ा, विट्ठल भगवान विट्ठल कैसे पड़ा पता आपको, विट्ठल भगवान कौन है, भगवान कृष्ण है, उनका नाम विट्ठल क्यों पड़ गया, हाँ ईंट के ऊपर खड़ा कर दिया उनको, किसने? एक भक्त ने, पक्का भक्त था। लेकिन जब वो आए तो देखने आए, रुक्मिणी और भगवान कृष्ण दोनों देखने आए, अपने भक्त को मिलने आए पंडरपुर में। सुनी थी उसकी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं 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 तुकाराम नहीं, तुकाराम नहीं, और भक्त है, तुकाराम नहीं। तुकाराम तो विठल के बहुत बड़े भक्त हैं, नो डाउट। लेकिन ये जो जिनको मिलने आए थे वो दूसरे भक्त हैं, जहां तक मुझे ध्यान है, मे बी आई एम रॉन्ग। एनीवे, तो वो क्या कर रहे थे, वो अपने माता पिता की सेवा में लगे हुए थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, कर्तव्य कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कर्तव्य तो पहले है, बाद में देखता हूं, पहले कर्तव्य निभा लेने दो मुझे। तो लेकिन नो प्रॉब्लम, आप ये ईंट लो, ईंट पे खड़े हो जाओ जरा, मतलब वेट करो, वेटिंग। तो हम जब भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, अरे ठीक बोला ना मैंने, हाँ पुनरिक्त है, यस वेरी गुड। तो जो भगवान का नाम भी विट्ठल पड़ गया, उन्होंने नाम ही बदल दिया विट्ठल है। तो इसी तरह से जब हम भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, सब कोई वेट कर, कोई भी आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, प्रेसिडेंट आ जाए, कोई वेट करो, भगवान के साथ कनेक्शन चल रहा है, भगवान के साथ मीटिंग चल रही है। नहीं, बड़े आदमी के साथ मीटिंग होती है, सारे फोन सब कुछ साइलेंट पे कर देते हैं, नहीं नहीं पहले लिखा होता है, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ने लिखा होता है, डॉक्टर के पास जाओ, स्विच फोन, अपने फोन सेल फोन स्विच ऑफ करके आओ, लिखा होता है ना, डॉक्टर ने बाहर लगाया होता है। मीटिंग्स में भी होता है ऐसे। और हम भगवान के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो सब कुछ ऑन है, तो क्या है ये, फिर अपराध नहीं है? और अगर हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कह रहे हैं कि सारे अपराधों की जड़ है कि हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते। आखिर में बोलते हैं ना, ध्यान पूर्वक जप ना करना भी एक अपराध है, लेकिन ये सारे अपराधों की जड़ है, ये बोलना चाहिए असल में। क्योंकि ध्यान पूर्वक जप नहीं करते, हमारा मन जो है जप के साथ कनेक्ट नहीं होता। तो जैसे भगवान के नाम ट्रांसेंडेंटल हैं, हमारा मन भी ट्रांसेंडेंटल नहीं होता, मन यहीं रहता है। और मन अगर हमारा जीता नहीं, मन अगर यहीं पर रहेगा तो कहां से हमारी जीत होगी? मन तो बहुत बलशाली है, कुछ भी करवा सकता है आपसे। तो इसीलिए जो श्रील प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं, इसको हमें, ये यज्ञ है, सच में ये यज्ञ है। इसी तरह से जब हम मंदिर में आते हैं, जब कीर्तन हो रहा होता है, तो हमें बोलना चाहिए, कि जब हम मिल के बोलते हैं उसकी और शक्ति ज्यादा है। जो हम अलग से जप करते हैं और जब हम मिल के संकीर्तन, मतलब मिल के हमारे कृष्ण महामंत्र ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, उसकी शक्ति और ज्यादा हो जाती है। प्रार्थना के रूप में हमें जप करना चाहिए कि हे भगवान, मैं तो आपका ही हूं ना, जैसे भगवान, जैसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अई नंद तनुज है? क्या है? मैं तो आपका हूं, किंकर हूं, आपका ही नौकर हूं, गिर गया हूं इस भव सागर में, गिर गया हूं मैं, कृपया मुझे मुझे निकाल लीजिए, कृपया मुझे निकाल लीजिए है, और अपने चरणों की धूली का एक कण ही बना लीजिए, कण है ना। भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसी प्रार्थना करते हैं, है ना। मैं फंस गया हूं, आप आपका जन हूं, आपका ही हूं, लेकिन इस संसार में फंस गया हूं, मुझे निकालो, निकालो मुझे, है ना। गोपीनाथ क्या है, गोपीनाथ गुच्छाओ, क्या है, गुच्छाओ संसार ज्वाला, है ना, गुच्छाओ संसार ज्वाला, आगे क्या है, जन्म मरण माला, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, यह जन्म मृत्यु का चक्र ही जीवन की सारी समस्या है। जन्म मरण माला, ये माला है, चक्र है, ये माला है, माला होती है ना। और ये जातना सही नहीं जाती, लेकिन हमें तो लगता है कि जातना है ही नहीं कोई, जातना क्या है, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। तो इसीलिए इस समाज की चीजों से, समाज से अलग, समाज जो है ये तो रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ है, इसकी तरफ देखेंगे, इसके साथ हम इंटरमिंगल करेंगे टेलीविजन के रूप में, अखबार के रूप में, मैगजीन के रूप में, अड़ोसियों पड़ोसियों के गप्पों के रूप में, सोशलाइजेशन के रूप में। मुझे जाना पड़ता है जी, शादी पे तो जाना ही पड़ेगा, अब समाज में रहने हैं तो शादी पे तो जाना पड़ेगा, अब शादी पे जा रहे हैं तो सजना भी पड़ेगा, पहले ब्यूटी पार्लर भी जाना पड़ेगा, ऐसे कैसे शादी पे चली जाए, धोती कुर्ता डाल के थोड़ा जा सकते हैं, आप क्या कह रहे हो, ऐसे जाएंगे शादी पे तो बेइज्जती हो जाएगी, और फिर कुछ गिफ्ट भी देना पड़ेगा, अब उसको भगवद गीता थोड़ा हम जाकर लेके जाएंगे, कोई गिफ्ट दे देंगे जो उनको पसंद आए, समझ में आ रही है बातें नहीं, तो भैया कहां से आएगा भक्ति, कहां से आ जाएगी, रजोगुण तमोगुण तो छोड़ नहीं रहे आप, सतोगुण तक तो आ नहीं रहे, तो उससे ऊपर कैसे उठ जाओगे। अगर आपको जाना है बॉम्बे बाय एयर तो यहीं से उड़ जाओगे कि एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, मुकेश अंबानी तो हो नहीं, घर पे बना लोगे अपना कोई हेलीपैड, सारे तो मुकेश अंबानी नहीं है ना, आम व्यक्ति को तो जाना पड़ेगा एयरपोर्ट, वहीं से पकड़ेगा ना हवाई जहाज तो बॉम्बे जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम चाहते हैं ट्रांसीडेंटल होना, शुद्ध सत्व में आना, तो सतोगुण में तो आओ, रजोगुण और तमोगुण में तो हम घूम रहे हैं और सपने देख रहे हैं ट्रांसीडेंटल की, संभव नहीं है। इसीलिए बोला असत संग त्याग ही वैष्णवाचार, भगवान के नामों में मन, ये ट्रांसीडेंटल है, तो ये ट्रांसीडेंटल नाम है, इनमें रजोगुण और तमोगुण में रह के मन कहां लगेगा, तो बस माला ही पूरी होगी, माला पूरी हो। तो वो एक व्यक्ति को कहा कि माला माला घुमाया करो, मैं बताया था पिछली बार, उसने बड़ा अच्छा तरीका निकाला, उसने क्या किया, साइकिल का जो पहिया होता है ना उसमें माला बांध दी, घूम रही है माला है कि नहीं, माला घुमाने का कितना अच्छा, तो ऐसे क्या घुमानी है, साइकिल से बांध दो और भी अच्छा है, और हाथ भी नहीं तंग होंगे, मशीन यूज करो, आजकल मशीन का जमाना है, घुमानी तो है ऐसे ऐसे। तो रजोगुण और तमोगुण में हमें क्या होगा, माला करनी पड़ रही है, कितनी माला होगी, सिर्फ चार ही हुई अभी तो, बड़ी ज्यादा बाकी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। ये माला क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो, पूजा कर रहे हो भगवान की, क्या कोई संबंध कैसे जुड़ेगा भगवान से, तो प्रार्थना करनी है, प्रायश्चित करनी है, जैसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि मैं गिर गया हूं, मैं मतलब पछतावा कर रहा हूं, बहुत पछतावा कर रहा हूं कि आपसे मैंने संबंध तोड़ लिया है, बहुत पछतावा हो रहा है, इस संबंध को मैं जोड़ना चाहता हूं, भगवान मेरे पे कृपा करो, भगवान मेरी सहायता करो, मैं ये संबंध जोड़ना चाहता हूं, बहुत दुखी हूं मैं संबंध तोड़ के। तब तो हमारा संबंध जुड़ेगा, यही तो माला इसीलिए तो करनी है, और किस लिए करनी है, यही तो है, तभी तो हमें होगा कि हम पापों के कारण है ना, ओ मन पापी अड़िया करदा नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नू, इसीलिए तो नहीं नींद आती है जप करते करते, हरे कृष्णा नींद आ जाती है, क्यों आ जाती है, मन लगता ही नहीं है इसमें, पापी है, तो ये समझना है ना, ये भगवान को प्रार्थना करनी है, समझना है कि मेरा मन पापी है, मैं पापी हूं, पाप है मेरे में, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहे कि नहीं, श्रील प्रभुपाद जी कह सकते हैं ऐसे, नित्य सिद्ध जो है वो कह सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैं तो नहीं ऐसे कह सकता, आप में से कोई होंगे नित्य सिद्ध, मेरी तो इतनी नजरें नहीं है मैं पहचान सकूं नित्य सिद्ध को, लेकिन अगर हम नित्य सिद्ध भी हैं तो हमें व्यवहार तो ऐसा करना है कि लोग घबरा ना जाए हमारे से, श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे व्यवहार थोड़ा किया नित्य सिद्ध की तरह, नित्य सिद्ध की तरह व्यवहार करते तो उनको अमेरिका जाने की जरूरत क्या थी, सारी सिद्धियां थी उनके पास, तो सारी सिद्धियों से काम कर लेते वो, तो नहीं सिद्धियां नहीं थी प्रभुपाद जी के पास, श्रील प्रभुपाद जी एक बार इलाहाबाद भक्ति चारू स्वामी महाराज ने बताया था इलाहाबाद में उनके साथ घटना घटी है। प्रभुपाद जी इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे उतरे, शायद कुंभ के मेले में जा रहे थे शायद, अब मुझे एग्जैक्ट इंसिडेंट याद नहीं है, लेकिन ये उन्होंने बताया था यहाँ व्यास आसन पे बैठ के। तो उतरे और उनके लिए गर्मी थी, उनके लिए नारियल लेके आए एक डिवोटी, नारियल पानी होता है ना डाब डाब, और प्रभुपाद जी ने उसको पिया, अच्छी तरह से पिया। वो पीने के बाद महाप्रसाद के रूप में उन्होंने शायद भक्ति चारू स्वामी महाराज को ही दिया, उन्होंने भी अच्छी तरह से पिया महाप्रसाद, उन्होंने किसी आगे डिवोटी को दे दिया। ऐसे पता नहीं 400 डिवोटीज ने पानी पी लिया, पानी खत्म ही नहीं हुआ। आखिर में पता नहीं कोई एक बाहर का कोई गांव का बच्चा था, वो लेके भाग गया, उसको पानी नहीं खत्म हुआ डाब में। 400 लोग पी सकते हैं एक डाब में से? कितना कितना बड़ा होता है घड़े से घड़ा, वो तभी भी नहीं पी सकते 400 लोग। तो प्रभुपाद जी में क्या मिस्टिक नहीं था, कम थोड़ा थे परशुराम जी से, शक्त्यावेश अवतार वो भी है, शक्त्यावेश अवतार है, तो उनमें सिद्धियां नहीं थी, लेकिन उन्होंने यूज थोड़ा की। तो इसीलिए अगर मान लो हम हैं भी नित्य सिद्ध, तभी भी हमें इसी धरातल पर रह के, ताकि लोग घबरा ना जाए, हमें भक्ति से इन इसी तरह से, अगर प्रभुपाद जी अपनी सिद्धियां यूज करनी चाहिए तो घबरा जाते लोग, तो और लोग कहते ये सिद्धियां ही दो महाराज, सिद्धियां ही चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए भक्ति, भक्ति की है सिद्धियां दो, इससे कुछ फायदा है। जैसे कई लोग, मैं जाता हूं, हालांकि मैंने डॉक्टरी छोड़े हुए तो कितना समय हो गया, मैंने 92 में छोड़ दी थी डॉक्टरी, 92 से मैं डॉक्टरी नहीं कर रहा, लेकिन लोगों को जरा लोगों को अच्छा लगता है कि जी पढ़ा लिखा है डॉक्टर है, तो लोग कई बार कह देते हैं जी ये प्रभु जी हमारे डॉक्टर हैं। और जी लेक्चर के बाद 4-5 जरूर लोग आते हैं पेशेंट के रूप में, वो ये नहीं पूछते कि प्रभु जी कुछ भागवतम से बताओ, उनको लगता है ये डॉक्टर अच्छा है, भागवतम का क्या करेंगे हम, है ना। जैसे किसी को शालिग्राम का पत्थर दे दो, वो कहेगा इसका मैं क्या, जिसको अकल नहीं है जिसको मूर्ख है, वो कहेगा अच्छा इसका क्या करूंगा, चलो बादाम ही तोड़ लेता हूं, उसे बादाम तोड़ने के काम आएगा। ये है रजोगुण और तमोगुण में जब लोग होते हैं उनको नजर ही नहीं आता कि साधु है, साधु से क्या हम एसोसिएशन लें, क्या लें इससे। डॉक्टर तो कितने घूम रहे हैं, है ना। इसलिए सिद्धियां तो साइंटिस्ट के पास भी है। आज जब मैं आ रहा था तो मैं मेट्रो से आया तो मैंने कहा ये मेट्रो वालों ने भी तो अनिमा सिद्धि इनको भी मिल गई है। अनिमा का क्या होता है कि पत्थर के बीच में से, चट्टानों के बीच में से निकल जाता हो, तो चट्टानों के बीच में से तो निकल के आ रही है ये ट्रेन, ये भी अनिमा सिद्धि इनको भी प्राप्त है साइंटिस्ट को। कैसे वो देखो कैसे, अब इमेजिन करो जमीन को धकेल के कैसे सुरंग बनाई हुई है और चली आ रही है, ये नहीं एक दो दिन चार दिन पांच दिन, कितने दिनों से चलती आ रही है, क्या बढ़िया अरेंजमेंट है सारे लोग, और ये ऐसा अरेंजमेंट करते हैं तभी तो साइंटिस्ट हमें मोह लेते हैं। सबके लिए है, ये नहीं कि आपको कुछ अपना शुद्धि करनी पड़ेगी या आपको कोई तपस्या, कोई जैसे भी हो आप आराम से ड्रिंक करके भी मेट्रो में बैठो और निमा सिद्धि के साथ पहुंच जाओगे आप, तभी तो मोह लेते हैं। नहीं समझ में आई, क्योंकि अगर हमें सिद्धियां प्राप्त करनी है तो हमें प्रयास करना पड़ेगा ना, इसमें तो उन्होंने प्रयास किया, आप मजे लो, तो थोड़ा सा पैसा दो मजे लो। और इसलिए कोई ऊट पटांग भी बात बोलते हैं तो हम मान लेते हैं, कहते हैं कि जी आप बंदर की औलाद हो, हाँ जी ठीक कह रहे हो, क्योंकि हमने मेट्रो जो दी है, कंप्यूटर दिया है, हवाई जहाज दिए, इतनी सारी चीजें दी है, हम बंदर की औलाद है, आप वो भी ठीक कह रहे हो। और ऋषि मुनियों की औलाद है, कोई गोत्र किसी का कश्यप है, किसी का गौतम है, किसी का पराशर है, और ये कहते हैं जी नहीं जी डार्विन की थ्योरी के मुताबिक तुम पहले बंदर थे, है नहीं। कैसे हम मूर्ख बन जाते हैं, कैसे हमें मोह लेते हैं, तो मोहन मोहना नहीं है, ये सिद्धियां क्या है। असली चीज ये है जो श्रील प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, जिसके कारण हम कष्ट पा रहे हैं, यही कष्टों का कारण है, यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं यही समस्या है, यह जन्म मृत्यु का चक्र ही जीवन की सारी समस्या है, ये समस्या है। और क्या समस्या है, है ना, और क्या समस्या है, यहीं रह जाएगा, इतना टाइम हम लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, सब यहीं का यहीं रह जाना है, कुछ साथ नहीं जाना, कुछ साथ नहीं जाना। तो इसीलिए हम जो है अपने जीवन को ऐसे ढालें, ऐसे हमारा जीवन होना चाहिए कि हमारा जो सत्वगुण में रहे, हम कम से कम सत्वगुण में सारा दिन, खाना पीना हमारा सात्विक होना चाहिए। मोमोज खाएंगे तो क्या होगा, मोमोज को भगवान के आगे रख लोगे तो खा लेंगे वो, भगवान तो खाते ही नहीं तामसिक चीज, भगवान कह नहीं रहे भगवद गीता में सात्विक तामसिक और राजसिक के बारे में बता नहीं रहे। तामसिक खाना क्या होता है और तो ये जो रियल जूस है ये 3 घंटे में निकला होता है या कितने दिन पहले निकला होता है रियल जूस है? तो तामसिक है या बढ़िया रियल जूस, यू विल बिकम हेल्दी, तुम्हारे बच्चे भी हेल्दी हो जाएंगे, रियल जूस पिलाओ, पिलाओगे? और तमोगुण में जाएंगे बीमार होंगे, क्योंकि बता रहे हैं कि जो ये खाना खाता है तामसिक, भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं वो क्या होता है, बीमार हो जाता है, वो बीमारी का कारण है, ये रोगों को जन्म देता है रजोगुण और तमोगुणी खाना। मत खाओ, सात्विक खाना खाओ, दूध पियो, अनाज खाओ, ये क्या सड़ा गला और झूठा खाते हो। एक वहां पे गुरुजी है, गुरुजी 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 लिखा होता है ना, गुरुजी, उनके आश्रम में जाओगे ना तो झूठा खिलाएंगे आपको। आप जाते हो तभी हाँ हाँ कर रहे हो। ओ जी 4-5 लोगों को एक प्लेट देंगे, झूठा खाओ जी झूठा, मतलब क्या भक्ति आएगी, तमोगुण तो वैसे पहले दे दिया तुमने। झूठा जो है ये भी तामसिक है, झूठा खाना थोड़ा भगवान को भोग लगाओगे, आप लगाओगे पहले खुद खा लो फिर भोग लगाते हो, थोड़ा भगवान खाएंगे, भगवान थोड़ा झूठा खाते हैं। कोई भी चीज लाके भगवान, अब मेरे सामने ये पानी रख दिया, मैंने पी लिया, आपने रखा पानी मेरे पीने के लिए रखा ना, मैंने पी लिया, इसका मतलब क्योंकि रख दिया सामने, तो ऐसे भगवान कुछ भी रख दोगे खा लेंगे? जो भगवान खाते हैं वही तो खाएंगे ना, अंट शंट थोड़ा खा लेंगे आपको, कुछ भी रख दो जी, मामोज पिज्जा और ये और पता नहीं, पिज्जा प्रसाद, मोमोज प्रसाद, चाउमई प्रसाद, और प्रसाद कहाँ हो गया ये? तमोगुनी चीजें नहीं खाते भगवान, हमें भी नहीं खानी, सात्विक खाना खाना है हमें, सिंपल सात्विक, तब तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हरे कृष्णा करते रहेंगे बस, और हरे कृष्णा हो जाएगा लास्ट में, खुद कुछ भी नहीं मिला, मिला कुछ भी नहीं, है ना। जैसे मान लो कोई यहां पे पूजा कर रहा है कोई डिवोटी, लेकिन सोच क्या रहा है कि क्या सेवा दे दी है टेंपल प्रेसिडेंट ने, क्या मुसीबत है, है? काश उसने मुझे मेंबरशिप की सेवा दी होती, कुछ पैसा तो आता, क्या मैं लग गया हूं। तो ये तमोगुण में वो भक्ति कर रहा है, थोड़ा ये भक्ति हो रही है, वो भगवान सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे, भगवान तो हृदय में बैठ रहे, क्या कर रहे हैं। ऐसी जब हम ये सोचते हैं कि करना पड़ रहा है तो तमोगुण है, छोड़ दो, अगर करना पड़ रहा है ना जब तो छोड़ दो, कुछ और कर लो जो कर सकते हो, पहले आओ तो सही सतोगुण में। सतोगुण में आपको लगेगा ये जरूरी है, आपको लगेगा मैं शरीर और मैं अलग वस्तु है, ये आपको रियलाइज होगा। जैसे प्रकाश में आपको रियलाइज होता है ना, मैं और करुणा चंद्रप्रभु अलग अलग हैं, थोड़ा मैं लग, अगर अगर अंधेरा हो जाए, घूप अंधेरा हो तो पता ही नहीं लगेगा कौन क्या है, यहां करुणा चंद्र बैठा है, यहां दूसरे डिवोटी बैठे हैं, पीछे माता जी बैठी हैं, घूप अंधेरा हो जाए मान लो पता लगेगा कुछ, किसे भी टकराते रहोगे ऐसे ऐसे। तो तमोगुण ऐसे ही है, क्या पता लगेगा आपको भगवान कौन है, भगवान के भक्त कौन है। तो इसलिए बहुत 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 जरूरी है ये, पहले हम सतोगुण में तो आए, ये फिर उससे ऊंचे की बात करें हम। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने कहा कि ध्यान पूर्वक जप करना बहुत महत्वपूर्ण है, तो सारे काम छोड़ के इसको हम करें ना, देखो कैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया हमें, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का सीन अलग था, नित्य सिद्ध हैं वो, हैं शक्त्यावेश अवतार हैं, उनकी प्रेजेंस से ही बहुत कुछ हो जाता था, उनकी प्रेजेंस। जैसे जैसे मान लो यहां कोई छोटा बच्चा आए, छोटा बच्चा आए, थोड़ा देख सकता है राधा राधिका रमन को, कृष्ण बलराम को, छोटा बच्चा 3 साल का, जिसकी हाइट ये दीवार से भी नीचे है, वो उसकी आंखें जाएंगी नहीं वहां तक, लेकिन उसके पिताजी हैं 6 फुटे, उठा लें उसको तो मजे से देखेगा वो सब कुछ, तुम्हारे से भी अच्छा देखेगा वो जो 5 फुट के है ना। ये है श्रील प्रभुपाद जी के सीन, ये था प्रभुपाद जी की इतनी, और आपको भी अनुभव होगा जब आप किसी एग्जॉल्टेड वैष्णव जो हैं, परम वैष्णव जो हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज इजलनाथ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनके प्रेजेंस में जाओ, देखो सारी चिंताएं गई, सारी पॉलिटिक्स गई, सारी समस्याएं जीरो हो जाती हैं, प्रेजेंस में, उनकी जाते ही प्रेजेंस में जाके आदि समय, यही तो है मिस्टिसिज्म, यही तो है जो यहां बताया है मिस्टिक। तो भगवान की भक्ति है वो छलकती है, शुद्ध भक्ति जो है। तो इसलिए प्रभुपाद जी का सीन जो है वो उन्होंने कई ऐसे आम लोगों को तमोगुण से भी एकदम उठा के उठा लिया, गोद में उठा लिया, तो सीन अलग। हमें तो नेचुरली आगे बढ़ना है ना, जैसे किसी को मान लो ऑनररी पीएचडी डिग्री मिल गई, ऑनररी समझते हो, ऑनररी ऑनर के लिए, जैसे मुझे याद है ये इंदिरा गांधी को मिली थी, इंदिरा गांधी को एक बार ऑनररी पीएचडी डिग्री दी किसी किसी कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी ने, लेकिन हम ऑनररी डिग्री की इंतजार करते रहे, वो पढ़ाई ना करें, स्कूल ना जाएं, एक दिन हमें भी ऑनररी डिग्री मिलेगी, वही एक दिन हमारे ऊपर भी कृपा होएगी, बस तब तक के लिए बैठे हुए हैं हम, कुछ नहीं कर रहे, या हम तरीके से जाएं, ग्रेजुअली ग्रेजुअली हम आगे बढ़ जाएं, तमोगुण रजोगुण से हम सतोगुण में आएं और सतोगुण से हम आगे बढ़ जाएं। तो इसीलिए भगवान का नाम जो है बहुत बहुत बलशाली है, लेकिन इसे हमें उसी भावना से करना है जैसे हम पूजा कर रहे हैं। और अपराधों से हमें बचना है ना, अपराध जैसे मैंने बताया सबसे, और ये भी एक अपराध है बहुत बड़ा कि हम निंदा करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, जप करेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन निंदा करने में उनको ना टाइम ही नहीं लगता, एकदम निंदा कर देते हैं किसी की। निंदा करने से पहले खुद भी तो झांक लो, जैसे आप किसी को ऐसे कह रहे हैं बहुत गंदा है ये, बहुत गंदा है, तो भगवान तुम्हें सुना रहे हैं कि देखो उसको तो एक उंगली कर रहा है, तो तीन उंगलियां तेरी तरफ भी आ रही हैं, देख इधर देख कितना गंदा है, जरा तीन गुना है कि नहीं है। जैसे सुई है ना, सुई और एक बार वो छननी होती है ना, छननी चाय छानते हो, चीजें छानते हो ना उसे, है ना, नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू के बीज उसी में रहा, छननी समझते हैं ना, छननी, और एक सुई होती है, तो सुई क्या कहती है छननी को, नहीं छननी सुई को क्या कहती है, छननी सुई को कहती है देख तेरे शरीर में तो तेरी छेद है, छेद है तेरे शरीर में, तेरा शरीर कहता है छेद वाला शरीर है, छननी कह रही है सुई को। तो ऐसे ही हमें भी किसी को कहने से पहले देखना चाहिए कहीं मेरे, क्योंकि ऐसा साइकोलॉजिकल भी बताते हैं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं कि कोई दोष अगर दूसरे में नजर आ रहा है ना, ज्यादातर वो आप में होता है इसलिए उसमें नजर आ रहा है आप। दोषों से रहित व्यक्ति जो होता है ना उसमें किसी को दोष ही नहीं, उसमें जैसे हमारे गुरु महाराज को किसी में दोष ही नहीं नजर आता, मैंने कई बार देखा है। एक बार क्या हुआ, हम बॉम्बे में थे, महाराज का जो है अभी अभी वो पहली बार जब महाराज का वो हुआ ना, स्टेंट डला महाराज के हार्ट में, स्टेंट डला पहली बार, तो गुरु महाराज जब बॉम्बे गए तो मुझे साथ ले गए एज ए डॉक्टर। तो हम जा रहे थे तो गुरु महाराज के एक गुरु भाई हैं, आप शायद नहीं जानते होंगे, वो गुरु भाई हैं, वो थोड़ा सा डेबिएट हो रहे थे, ऋत्विक अपने आप को ऋत्विक कह रहे थे, तो उन दिनों पूरी तरह से अलग नहीं हुए थे, वो भी बॉम्बे मंदिर में ही थे। और महाराज जब निकले, वो गृहस्थ हैं, वो महाराज के गुरु भाई हैं, कलकत्ता के पहले प्रेसिडेंट थे वो, तो वो गृहस्थ हैं, महाराज सन्यासी हैं, गुरु हैं, जीबीसी हैं, कितने ऊंचे हैं। तो जैसे ही मुझे अच्छी तरह से याद है, जैसे ही महाराज जाने, हम डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो जैसे ही महाराज वो बॉम्बे मंदिर का जो गेट है उससे निकलने लगे तो वही मिल गए, और थाड़ थाड़ वो महाराज को बोलना शुरू कर दिया, ये है वो है, बहुत गुस्से से बोलना शुरू कर दिया, अजीबोगरीब। और मैं तो अभी न्याय न्याय ही था, मैं कोई इतना पुराना, मैंने कहा ये कैसे बोल रहा है महाराज के साथ, वो महाराज कुछ कह भी नहीं रहे, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये ऐसे कैसे बोल सकता है, इतने बड़े महाराज और जीबीसी ये वो, महाराज ने कुछ बोला ही नहीं, इसको सुन लिया चुपचाप, बहुत लेफ्ट राइट बहुत बोल रहा था वो, पूछो मत, मुझे याद नहीं है क्या क्या, मतलब ये मुझे अच्छी तरह से याद है कि बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था। तो महाराज मैं सोचता रहा, जब वापस आ रहे थे ना डॉक्टर के से, रहा नहीं गया, मैंने कहा महाराज वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, बहुत देर वो कलकत्ता के प्रेसिडेंट रहे, नाम भूल गया, तो मैंने कहा महाराज वो आपको कैसे बोल रहे थे, महाराज जी वो तो आपसे जूनियर हैं, गृहस्थ हैं, ऐसे कैसे बोल रहे थे? कृष्ण प्रिया यू डोंट नो, ही डिंट मीन इट, समझे? कि वो बोल रहे थे लेकिन उनका ऐसा मतलब नहीं था। नहीं समझ में आई बात? नहीं आई? ये है महानता, उन्होंने लिया ही नहीं उसको। कहते हैं वो बोल रहे थे, समझ रहे हैं मेरे गुरु भाई है, उनका मतलब ऐसा नहीं था, मतलब मुझे तो एक सेकंड में चुप करा दिया, कोई और होता तो शुरू हो जाती प्रजल्पा। हाँ, वो आपकी सारी उसकी हिस्ट्री बोल देते, सब कुछ बोल देते और सीन खत्म। मैंने कभी भी नहीं देखा महाराज को कितना भी आप इन्वॉल्व करने की कोशिश करो पॉलिटिक्स में या प्रजल्पा में, एक सेकंड के लिए इन्वॉल्व नहीं होते, एक सेकंड के लिए भी, मेरा ये अपना अनुभव है, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते वो। ये है ऐसे, ये भक्तों के संग में जो है पता लगता है कि क्या है शुद्ध भक्ति। हमें हम भी तो उन्हीं से, उन्हीं के वंशज है ना, उसी तरह हमें भी ये इस शुद्ध भक्ति का मतलब है कि हमें जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्कर से निकलना है, नहीं तो यहाँ पे क्या है, हेवनली प्लैनेट्स में चले गए या यहाँ पे भी थोड़ी सुख सुविधाएं हो गई, उससे क्या हुआ? तो और बाहर के लोगों के पास भी सुख सुविधाएं हैं, उसमें क्या अंतर क्या है? एक कहानी सुना दूं आखिर में चलते चलते। एक कौवा था, कौवा, कौवे ने देखा एक नदी में हाथी मर गया, हाथी की लाश बहे चली जा रही है, हाथी बहुत बड़ा हाथी, तो कौवा गया, हाथी का मांस खाया मजे से, और साथ में नदी थी मीठा अमृत जैसा पानी पिया उसने, तृप्त हो गया, ओह मन तृप्त हो गया। तो उसने कहा कि वो चल भी रहा था, ये तो बड़ा अच्छा यान है, ये तो इसी यान में रहो, इसी को खाओ पानी पियो, इतना सुंदर अच्छा नजारा, इधर उधर जाने की जरूरत क्या है, पेड़ पौधे रमणीय स्थान में रहो और आनंद लो। नहीं बढ़िया है ना, बढ़िया सोचा उसने। दो दिन निकले, तीन दिन निकले, चार दिन निकले, 15 दिन निकल गए, महीना निकल गया, ऐश कर, बहुत इंजॉय, आहा बहुत आनंद आनंद आनंद, कैसे हो प्रभु जी? आनंद में जी, आनंद में, ऐसी कौवा बोल, आनंद में जी। अब क्या हुआ जी, नदी ने तो समुद्र में मिलना ही है, आखिर में नदी समुद्र में मिल गई, वो हाथी भी उसी में चला गया, तो बचा कुचा जो था, कौवा भी उसके ऊपर बैठा हुआ था, कौवा भी समुद्र में पहुंच गया। अब क्या करे, पानी खारा और दूर, और वो हाथी तो अब चला ही गया था लगभग, और दूर दूर तक अब उड़ नहीं सकता, कहां जाए, समुद्र को कैसे पार करेगा, तो मर गया, कौवा का कौवा मर गया। तो इसी तरह से हमें भी इन इन लोभों में नहीं आना कि जहां अच्छा है। प्रभु जी भक्ति तो यूएसए में भी होती है, भक्त तो यूएसए में भी है, मंदिर वहां पे भी है, वहां क्यों ना जाया जाए? भक्ति करनी है तो यूएसए में करो, ये क्या भक्ति, यहां कितनी असुविधाएं हैं भक्ति करने में, नहीं गलत है, ठीक है। दूर के ढोल सुहावने, आपका ऐसा लगता है हमें, हमें आपको लगता है वो बड़ा मंदिर है, ये है, हमें ये वाला मंदिर अच्छा लगता है, दूर के ढोल सुहावने, क्योंकि हर चीज की अपनी एक, जहां मटेरियल वर्ल्ड है ना ये, जहां उसकी अच्छाइयां हैं उसके साथ बुराइयां भी हैं। तो इसीलिए हमें इन सुविधाओं के पीछे अपने इसको नहीं त्यागना है ना, कितनी भी कम सुविधाएं हों, अगर हमें भक्ति हमारी आगे बढ़ रही है तो वो अच्छी बात है, वो भाग्य की बात है, इससे क्या है, ये तो चली जाएंगी, आनी जानी चीजें हैं ये, ठीक है। ओके थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका कोई प्रश्न है तो और दो चार मिनट चर्चा हो। हाँ जी प्रभु जी, इनको माइक दो, शाबाश। वेरी गुड, वह परफेक्ट आंसर। तो भगवद गीता में भगवान ने एक चैप्टर ही इसके लिए बोला, एक तो कौन सा चैप्टर है ये बता, है? उसका नाम ही यही है, प्रकृति के तीन गुण। कौन सा है? 14 चैप्टर, उसको पढ़े हम। और फिर जैसे ये बोल रहे हैं श्रद्धा के विभाग आगे 18, उसमें भगवान ये बता रहे हैं, है ना, 17वें अध्याय में श्रद्धा के डिविजन्स ऑफ फेथ, उसमें बता रहे हैं, यही बता रहे हैं कैसा खाना सतुगुनी है, कैसा सुख सतुगुनी है, कैसा दान सतुगुनी है। तो वही उसको याद करें और उसी तरह से बिहेव करें ना। ये नहीं किसी को भी दान दे दिया बिना सोचे समझे दान दे दो, ठीक है ना। दान देना है तो कहां देना है? सात्विक दान देना है। सात्विक दान क्या है? सात्विक दान है कि भगवान के लिए दो, भगवान उन लोगों को दो जो भगवान की सेवा में लगाएंगे आपका दान, है ना। और कर्तव्य समझ के दो कि मेरा कर्तव्य है, ये नहीं कि जी क्या मिलेगा, जी आप कह रहे हो दान दे दो वापस में क्या मिलेगा। अच्छा 3 दिन रह सकते हैं कहीं भी सारी दुनिया में, वेरी गुड वेरी गुड। ये राशिक दान है, ये तामसिक नहीं है लेकिन राशिक तो है ये। और तामसिक क्या होता है? मजबूरी में देना, जैसे किसी से खड़ी सी लिया, मतलब बड़ी मजबूरी में दे रहे हो, मजबूरी है क्या करूं, और बिना सोचे समझे कहीं भी दे दिया, किसी को भी दे दिया। जैसे कोई मगर ही पड़ जाए आपके, दे दो 2 रुपए दे दो चाय पीनी है, 2 रुपए दे दो चाय पीनी है, मगर पड़ जाए ले यार पैसा छोड़, वो चाय भी पी रहा है गंदा काम भी कर रहा है आपका पैसा भी ले रहा है, आप भी मजबूरी में दे रहे हो। तो ये सारी चीजें, ये अगर आप देखोगे तो आपको 19 कैटेगरीज मिलेंगी, और भी कैटेगरी, लेकिन ये तो कम से कम याद करें उससे हमें काफी हेल्प मिलेगी। 19 कैटेगरीज भगवान ने बताई हैं। तो हर चीज को, हर ये जो तमोगुण रजोगुण सतोगुण तो फैला हुआ, ये प्रकृति है ना, इसी का तो इस संसार इसी का तो बना हुआ है। देवी हेशी गुणमयी मम माया दुरत्या, ये माया का तो सारा संसार बना हुआ है सब जगह। जैसे जैसे ये कपड़ा है, इधर भी धागे हैं, धागों का ही तो बना हुआ है ये कपड़ा, धागे नजर नहीं आ रहे, धागे ही तो हैं आपका कपड़े में भी, धागे ही तो हैं और क्या है। ऐसे भी धागे फैले हुए हैं, ऐसे भी फैले हुए हैं, धागे ही धागे हैं। ऐसी प्रकृति फैली हुई है सब जगह। ब्रह्म मुहूर्त में उठे हम, अब उठेंगे ही हम 5 बजे 6 बजे तो कहां से हम सतोगुण को पकड़ेंगे, रजोगुण शुरू हो गया आपका, कहां से माला होगी फिर। दिमाग तो मन तो भाग रहा है, भाग रहा है इतनी तेजी से भाग रहा है, और ये भी चाहिए वो भी चाहिए, काम क्रोध लोभ ये सब चीजें आ रही हैं, अब क्या करोगे अब। तो सुबह उठे हम 4 बजे उठे रोज। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा जो व्यक्ति 4 बजे के बाद उठता है, फाउंडर आचार्य उनकी वाणी रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति 4 बजे के बाद उठता है ये समझ लेना चाहिए वो भक्ति में सीरियस नहीं है। देख सकते हो आप, ये प्रभुपाद जी ने कहा है, जो व्यक्ति आपको लगता है 4 बजे उठता है, चाहे मंदिर में है चाहे मंदिर के बाहर है, तो समझ लो वो सीरियस नहीं है भक्ति का। प्रभुपाद जी ये नहीं कहा कि मंदिर में रहने वाले लोगों को 4 बजे से पहले उठना चाहिए, मंदिर के बाहर जो हैं वो उठ सकते हैं 5 बजे 6 बजे। अगर संडे का दिन हो बहुत थके हुए हैं सारे हफ्ते के तो 12 बजे भी उठ सकते हैं। ये नहीं बोला प्रभुपाद जी ने, पढ़ लो उनकी किताबों में। प्रभुपाद जी ने सबके लिए कहा कि जो व्यक्ति 4 बजे के बाद उठता है इसका मतलब कंक्लूजन है कि वो भक्ति में सीरियस नहीं है। अब आप देख लो सीरियस होना चाहते हो या ऐसे ही चलेगी, आपके ऊपर है, चॉइस आपके ऊपर है। आप गंभीर भक्त बनना चाहते हो या ऐसे ही चलेगा, कोई बात नहीं अगले जीवन में देखेंगे। लेकिन अगला जीवन इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है इस संसार में दोबारा आना, बहुत मुश्किल है आना ही, वाले तो मुश्किल है क्योंकि अभी मनुष्य पैदा ही नहीं हो रहे अब। हाँ पैदा होने, आपको पता है एक ये भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है, पहले ये समस्या थी कि बहुत पॉपुलेशन हो रही है, ओवर पॉपुलेशन, अभी आपको पता है ज्यादातर लोगों के बच्चे ही नहीं होते, पता है आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। इसीलिए ये इनफर्टिलिटी क्लिनिक वाले बहुत लाखों रुपया कमा रहे हैं, कहते हैं मेरे पास आओ हम बच्चा देंगे आपको, लाओ 1 लाख रुपए का पैकेज है, सारे टेस्ट होंगे, ये होगा वो होगा, 1 लाख रुपए निकालो चलो। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, उनके कितने सालों से बच्चे नहीं हुए, और वो कितने उन्होंने पैसा खर्च किया, फिर पता नहीं सिंगापुर गए, कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद उनको बच्चा हुआ। एक बार तो जब हुआ वो मर गया, होते ही मर गया। बड़ी रो रही थी, कह रही थी भगवान नहीं है। मैं बाई चांस मैं उनको उसी वक्त मुझे पता लगा मैं भगवान का हार लेके गया उनके लिए आशीर्वाद के रूप में, भाई चलो जो हो गया, कोई भगवान नहीं है, उसने हार भी डाला, वो भगवान नहीं है, प्रसाद भी नहीं लिया, भगवान नहीं है, ये है वो है, सब बेकार है। भगवान ने शायद सुन लिया होगा सीरियसली, वो इकट्ठे ही उसको तीन बच्चे दे दिए, ट्रिपलेट हो गया। जानता हूं मैं अच्छी तरह से, हमारे अच्छे डोनर हैं, ट्रिपलेट हो गए तीन। सुन ली होगी जब बोल रहे हो, भगवान ने कहा अच्छा ऐसी मेरी अगर प्रेजेंस तुझे चाहिए तो ये ले, तीन बच्चे ले ले तू इकट्ठे ही, नहीं तो एक होता है दो होता है तीन। खैर हुए उसी से ही, वो सिंगापुर गए, वही जो करते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो आप पता नहीं आप आओगे कि नहीं, मनुष्य तो पैदा ही नहीं होंगे, फिर क्या करोगे? होंगे भी तो अभी अबॉर्शन इतना तेज हो गया कि वो गर्भ में ही मार दिए जाओगे, फिर क्या करोगे? आए भी बड़ी मुश्किल से, किसी तरह से मान लो आ गए तो अबॉर्शन यहीं पे पेट में ही मार देंगी, माँ मार देगी, अब क्या करोगे? और निकलोगे तो फिर ज्यादा पता नहीं जी पाओगे कि नहीं। आजकल तो मैं एक जवान लड़का आया, मैं हैरान हो गया देख के, 25 साल उसकी उम्र है, अपनी फियांसी के साथ आया है, और क्या है जी, अभी पता लगा जी ओरल कैंसर है, ओरल कैंसर। मैंने कहा ओरल कैंसर, तू तो ना शराब पीता है ना सिगरेट पीता है, हो गया? क्योंकि कलयुग है, ये कलयुग है, हर चीज कंटेमिनेटेड है। आप जो दूध पी रहे हो ना, वो आपको पता नहीं है क्या है, आपको नजर आता है दूध, पता नहीं दूध है क्या है वो। हमारे एक किसी ने पोस्ट भेजी थी, वो बता रहा था कि दूध बनाने का तरीका, आप घर में बना सकते हो, भैंस और गाय की जरूरत नहीं है। फॉर्चून होता है ना, फॉर्चून ऑयल, रिफाइंड ऑयल नहीं होता, वो लो और सरफ, सरफ वो मिलाओ, और थोड़ा सा दूध मिलाते हैं, एक बाल्टी दूध बन जाता है, तरीका बताया हुआ था। और से पूछा कि ये पता नहीं लगता, कहते हैं जी नहीं पता लगता, जो वो टेस्टर होते हैं वो भी पास हो जाता है, और ये दूध हमारा खूब बिकता है दिवाली के दिनों में, क्योंकि वहां पे हमारे पास इतनी डिमांड, कैसे करें, इतनी डिमांड हो जाती है दिवाली के दिनों में कि हमारे पास और कोई चारा ही नहीं होता, ऐसे ही दूध बना के बेच सकते हैं हम। प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं तो कैंसर क्यों नहीं होगा? छोटी छोटी उम्र में कैंसर हो रहा है लोगों को, छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर हो रहा है। नहीं तो ये बीमारियां, हम जब पढ़ते थे, मैंने जब पढ़ाई की 1980 के आसपास, तो ये हम सोचते थे कि ये बीमारियां जो हैं 50-60 के बाद की बीमारियां हैं, कैंसर, हार्ट अटैक। कोई भी व्यक्ति यंग आता था तो हम सोचते ही नहीं थे, हम उनकी वो चेस्ट पेन कहता था तो हम ECG नहीं करते थे, सोचते ही नहीं थे कि इसको कहां से हो जाएगी हार्ट की बीमारी। अभी तो जाओ किसी को भी चेस्ट फोन हो, पहले ECG करेंगे, नहीं चाहे वो 15 साल का ही हो, नहीं 100% करेंगे, इसको भी हो सकता है हार्ट, हार्ट में नाड़ियां जो हैं सिकुड़ गई हों। ठीक है, तो इसीलिए ए जन्म में चले जाओ वापस, वापस नहीं आना हमें, ये प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, प्रभुपाद जी यही चाहते हैं, इस जन्म में ये आखिरी जन्म होना चाहिए हमारा, उसके लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा। अगर हम सीरियस नहीं होंगे तो फिर तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी थोड़ा चलती है ना, वो तो प्रकृति की चलती है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, बहुत आगे बढ़ गए, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की
सिद्धांत बोलते हैं भगवान जो खत्म हो गया
नहीं नहीं कर्मों के अधीन नहीं है कर्मों के
सिद्धांत
वो लोग ऐसे कह सकते हैं बट हाँ वो गलत
सिद्धांत लेकिन जैसे यहाँ पे बताया कि जो परशुराम है उनको भी सिंपल रिएक्शन है वो भगवान के अवतार है
नहीं ये ऐसा करने के लिए ऐसा सिखाने के लिए बता रहे हैं ऐसा सिखाने के लिए भगवान कई लीलाएं सिखाने जैसे भगवान जब गए तो तीर मारा ना एक वहेलिए ने तीर मारा उनको लगा